أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. صالح نے کہا اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، سو اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں جہاں چائے کاتی پھرے، اور اس کو کچھ تکلیف نہ دو ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا. فاخروها فقالا تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب. پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا تم اپنے گھروں میں اور 3 دن عیش کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا. ولما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. پس جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا. بے شک تمہارا رب طاقتور زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّلثَّمُودَ. اور ظالموں کو ایک چنگھار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. سن لو کہ سمود نے اپنے رب سے انکار کیا، سن لو کہ سمود پر پھٹکار ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم وصدق المہدی المعود النظیم. سیرت بندگی میاں سید شاہ فمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ ماہ شوال کے آغاز سے، دو شوال سے یہ خصوصی نشستوں کا آغاز کیا گیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تفصیل سے جو ہے سیرت سننے کا موقع ملا، کسی قدر تفصیل سے بندگی میں کی سیرت سننے کا موقع ملا. اگرچہ کہ جو ہے جو بشارتیں ہیں بندگی میں کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ بھی نہیں رکھی گئی، اس کے اوپر جو ہے صرف سیدھا جو ہے کتاب لکھی گئی ہے بشارات پہ، وہ تفصیل سے جو ہے اس میں نہیں جا سکے، لیکن واقعات جو تھے وہ جو ہے آپ کے سامنے رکھے گئے، شہادت کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی. جیسا کہ ہمارے آقا امامنا حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اسی حساب سے من 20 سال کے بعد پہلے روز بندگی میں سیدنا شیخ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی. 150 کا لشکر تھا، 150 کی جو ہے فقراء کرام کی جماعت تھی، اور سامنے دشمنوں کا 45,000 کا لشکر جرار تھا، لیکن حزب وعدہ جیسا کہ میں اسلام نے فرمایا تھا فتح بندگی میں رضوان کو نصیب ہوئی. اور جیسا کہ پھر کہا گیا تھا دوسرے دن کی جو جنگ سداسن میں واقع ہوئی، بندگی میں سیدنا شیخ النیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے شہادت بھی، سر جدا ہوا، تن جدا ہوا اور پوز جدا ہوا، تن مبارک کو سداسن میں دفن کیا گیا، سر مبارک یعنی جو سر کے استخوان تھے ہڈیاں تھیں ان کو جو ہے پٹن میں دفن کیا گیا، اور سر کا جو پوز تھا وہ چاپنر میں دفن کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے تفصیل سنی کہ بندگی ملک الحادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خلیفے تھے غازی ہوئے ہیں، ان کا اپنے پورے دائرے والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جو کوئی زخمی حضرات تھے ان کے ساتھ جو ہے سدراسن سے ہجرت کر جانا جالور کی طرف تھی. اور جیسا کہ بندگی میاں نے فرمایا تھا جو صحابہ اس وقت اختلاف رکھتے تھے، وہ بھی میں اسلام نے فرمایا تھا کہ صحابہ اختلاف رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ بعد میں پردے ہٹا دے گا، پردے ہٹا دیا تو ان خلیفے کے ہاتھ پہ آ کے جو ہے رجوع لائے ہیں دوسرے جو مہاجرین تھے، دوسرے جو صحابہ تھے. اب اس کے بعد دیکھیجئے بندگی میاں نے ایک پوزیشن وہی دی تھی جب بندگی میاں سے جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں کے فرزند کے گلے پہ چھری پھیری گئی، تو بندگی میاں نے ایک پیشن گوئی دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے مظفر کی اولاد پر چھری پھیری جائے گی، آپ نے کہا تھا مظفر جو اس وقت کا بادشاہ تھا مظفر کی اولاد پر چھری پھیری جائے گی بطور پیشن گوئی کے کہا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو ہے جو تباہی ہوئی ہے بادشاہ اس کی اولاد کے اوپر بندگی میاں کی بدوا تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. صاحب سراج منیر لکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لوگ جو ہے کبھی بدوا نہیں دیتے، کیونکہ اسلام کا فرمان ہے کہ فقرا जो है किसी को बदवा नहीं देती, हमारे जो फ़कीर होती है वो किसी को बदवा नहीं देती। बंदगी मियाँ ने बतौर पेशेंगोई के कहा था कि जो है उनकी औलाद पे, आपको मालूम था कि उसके ऊपर ये होने वाला है, आपने अपनी तरफ से जो है दुआ या बदवा नहीं दी, आपने जो है सिर्फ बतौर पेशेंगोई के कहा था कि जो है मुजफ्फर की औलाद पर जो है छुरी फेरी जाएगी, वही हुआ। अब उसकी तफसील आपके सामने पढ़ के सुना लो कि किस तरह जो है उस हुकूमत का हाल हुआ है, किस तरह एनएल का हाल हुआ है, किस तरह मुजफ्फर की औलाद पर जो है छुरी फेरी गई है। बंदगी में रजनी शहादत जो है 930 हिजरी में हुई, 932 हिजरी, दो साल के बाद खलील खां अलमलकब सुल्तान मुजफ्फर सानी के इंतकाल की खबर सुनकर, उसका इंतकाल हुआ मरा, उसका बेटा बहादुर शाह जो उस वक्त दिल्ली में था तखनशीनी की उम्मीद पर, वहाँ से कोच दर कोच बंदगी मलिक इलादात खलीफ ग्रोह की खिदमत में डूंगरपुर आया। वो सीधा जो है यहाँ पे नहीं आया गुजरात को, डूंगरपुर जो है पहले मलिक इलादात खलीफ ग्रोह के पास गया, देखिए मुजफ्फर का बेटा, और अर्ज़ किया कि सल्तनत गुजरात में जो तहवबाली पैदा हो गई है, आप बुजुर्गों के साथ मेरे वालिद की बदकिरदारियों का नतीजा है, मैं रुजू लाने की गरज से खिदमत अकदस में हाजिर हुआ हूँ, अगर नजर इनायत से तकसीर माफ़ फरमा कर इस अकीदतमंद को तख्त गुजरात पर मसलत फरमा देंगे तो क्या अजब है कि राह हिदायत पर आकर तस्दीक से मुशरफ हो जाऊँ। उसने कहा कि जो है मैं तकसीर माफ़ करने के वास्ते आया हूँ, गरज तो जो है बादशाह थे पीछे, तो जो है बादशाह चाहता है और ये भी चाहता है कि जो है इनकी वजह से जो है इनको जो तकालीफ पहुँचाई गई मेहदवियों को, उस वजह से जो है हमारे हालात जो है ख़राब हुए। तो उसने जो है सीधा बंदगी मलिक इलादात खलीफे गुरु के पास आके जो है रुजू लाया। अब देखिए हमारे बुजुर्गों की क्या ताकत थी, ये कैसी थी, फुकरा है, आम फुकरा है। बंदगी मलिक इलादात ने अपने साहिबजादे बंदगी मलिक पीर मोहम्मद को 932 हिजरी में बहेली में सवार करा के अहमदाबाद भेजा, बादशाह के साथ जो बेटा आया है बहादुर शाह के साथ जो है अपने बेटे को जो है सवार करा के भेजाया, जाओ जाके जो है इनको तख्त पे बिठा के हो। तो वहाँ पे हुआ क्या है, बहादुर शाह जब बेटा यहाँ पे दिल्ली से यहाँ पे आया, जब तक वहाँ पे ऑलरेडी जो है एक बेटा जो है बैठ चुका है, ऑलरेडी जो है मुजफ्फर का जो है एक बेटा बैठ चुका है, बहादुर शाह भी आपके साथ जो है बहेली में बैठ गया। अहमदाबाद पहुँच कर देखा कि सुल्तान मुजफ्फर के इंतकाल पर उसका बड़ा शहजादा सिकंदर शाह जो नियायत वजी था तखनशी हो गया था, लेकिन दो ही महीने के खलील अरसे में इमादुल मुल्क खुशकदम ने उसे मार डाला और उसके भाई नासिर खां को महमूद शाह सानी के लकब से तखनशी कर दिया। वहां पे दो ही महीने में मुजफ्फर का बेटा बैठा भी और जो है उसका कत्ल भी कर दिया गया, और एक दूसरा बेटा भी बैठ चुका है, अब दूसरा बेटा भी जो है बैठ चुका है, अब ये तीसरा बेटा जो है बंदगी मलिक इलादात खलीफे ग्रोह के बेटे के साथ जो है आ रहा है। अब देखिए बंदगी मलिक बंदगी मियाँ मलिक पीर मोहम्मद ने उस नए सुल्तान का हाथ पकड़कर तख्त से उतार दिया और बहादुर शाह को तख्तनशी किया। बाकायदा जो है महल में दाखिल हुए और जो है जो नया सुल्तान बैठा हुआ था उसका भाई, उसको तख्त पर हाथ पकड़ के जो है तख्त से हटाया और बहादुर शाह को तख्त पे बिठाया। तो जो रुआब से बंदगी मलिक इलादात के फर्जंद बंदगी मलिक पीर मोहम्मद आए थे, तो आपके ताल्लुक से कहा गया जो बादशाह को अपने हाथ पकड़ के हटाया है उसका नाम नासिर खां था, नासिर खां ने मारे खौफ और हिरास के होश बाख्ता होकर अपने हलक पर इस्तेरा फेर लिया। यूं बंदगी में सिद खुनमीर की पेशेंगोई की मुजफ्फर की औलाद पर छुरी फेरेगी सादिक है, उसने जो है अपनी जो है गले पर छुरी फेर लिया, इतनी हैबत उसकी परतारी हुई। फिर देखीजिए बहादुर शाह जो है तीसरा बादशाह, ये सिर्फ जो है 3-4 महीने में जो है 3 बेटे बैठ चुके हैं, एक बेटा बैठा उसको जो है उसी के भाई नासिर खां ने कत्ल कर दिया, नासिर खां जो है अपनी खुदकुशी कर लिया, अब तीसरा जो है बहादुर शाह बैठा है जिसको बंदगी मलिक पीर मोहम्मद ने बिठाया है, लेकिन उसके दिल में भी जो है कीड़ा था। एक रोज बहादुर शाह के दिल में यह ख्याल फासिद पैदा हुआ कि इस मर्द खुदा यानी बंदगी मलिक पीर मोहम्मद की नज़र में कैसी जबरूती तासीर है कि इसके सामने कोई ता भी नहीं ला सकता, मुझे खौफ है कि कहीं मुझे भी तख्त से उतार कर किसी दूसरे को ना बिठा दे। अब जब जो है भाई को बिठा के जो है हटा के मुझे बिठा सका तो मुझे भी हटा के जो है किसी को बिठा सकता, बेहतर यह है कि ऐसे शख्स को कत्ल करके दिल से यह खदशा निकाल डालो, बेहतर ये। तो उसने सोचा कि जो है इनको कत्ल ही कर डालो बंदगी मलिक पीर मोहम्मद को। ये बात जब खलीफे ग्रोह रजी अल्लाह तआला ने सुनी, आपके वालिद ने बंदगी मलिक इलादात खलीफे ग्रोह ने सुनी, तो फरमाया उसे ऐसे जा का तीर लगा है कि कोई उसे निकाल नहीं सके, उसे ऐसी जगह का तीर लगा है कि अब उसे कोई निकाल नहीं सकता, इतना फितना उसके दिल में जा गुजरी हुआ है। तो लिखा है कि हुआ ये कि बहरहाल उन्हीं दिनों में 1535 ईस्वी में 1535 जो है एडी चल रही थी, उसमें हुमायूं बादशाह मुगल जो है इन्वेड हुए, उसी दौर में हुमायूं बादशाह दिल्ली ने बहादुर शाह को शिकस्त दी, इस बहादुर शाह को जो है हुमायूं ने शिकस्त दी, गुजरात फतेह कर लिया, लेकिन तख्त पर उसी को कायम रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे बरस बहादुर ने जो है फिर मुगलों को गुजरात से निकाल दिया। ये खबर सुनकर 1536 ईस्वी में हुमायूं फिर गुजरात आया और बहादुर को शिकस्त फांस दी। अब ये बहादुर शाह भागकर काठियावाड़ चला गया और बंदर मंगर दिल में आकर बंदगी मियाँ बाबन सूरी फ़कीर बंदगी मियाँ से कुनवी सिद्दीक़ विलायत से अर्ज़ की। अब ये बहादुर शाह जो है भागा भागा मुग़लों से भाग के जो है एक जगह पे आया बंदगी मियाँ बाबन, ये जो है बंदगी मियाँ शाह कुनवी के जो है फ़कीर थे, मजूब हो गए थे, जिस वजह से जो है बंदगी मियाँ ने जो है आपको दायरे के बाहर रहने का हुक्म दिया। बंदगी मियाँ के साथ नहीं रहते थे, मजूब हो चुके थे, जो दीवानों का हाल हो जाता है, शरीयत इनके ऊपर लागू नहीं होती, ये जो है जंगलों में रह रहे थे। तो दौड़ा दौड़ा जो है बहादुर शाह जो है बंदगी मियाँ के फ़कीर हैं बंदगी मियाँ बाबन सूई के पास जो है आया है और अर्ज़ किया कि जो है मैं आपका हूँ, मेरी तकसीर माफ़ हो और लिल्ला मुझे सल्तनत गुजरात गुजरात इनायत फरमाए। अब देखिए बंदगी मलिक आज़ाद के पास नहीं गया दोबारा, अब दूसरे फ़कीर के पास आया है, आके जो है कह रहा है कि जो है मेरी तकसीर माफ़ करे और जो है मुझे लिल्ला जो है आप सल्तनत गुजरात इनायत फरमाए। देखिए ये लोग जानते हैं इनके पास अब कोई भी फ़कीर जो है इनको बादशाह दे सकता है आसानी के साथ। तो कहे बाबन मियाँ बाबन सूरी से कह रहे हैं कि जो है मुझे लिल्ला सल्तनत गुजरात इनायत फरमाए। आपने मुराकबा किया और कुछ ना फरमाया, आपने सर झुकाया और मुराकबा किया और कुछ ना फरमाया। फिर उसने इज्ब इलाह के साथ अर्ज़ की, आपने फिर मुराकबा किया और फरमाया कि हुक्म नहीं है। फिर अर्ज़ किया, आपने फिर मुराकबा किया और यही फरमाया कि हुक्म नहीं है। कहा कि जो है ऊपर से जो है हुक्म नहीं मिल रहा है। हजरत के इनकारी जवाब को सुनकर बार बार सुनकर बहादुर को गुस्सा आया, जल्लादों से कहा कि इसे कत्ल कर दो। जल्लादों को कहा कि मियां बाबन को जो है कत्ल कर दो। जल्लाद हजरत की बुजुर्गी के मोतखद होने के अलावा आपके ज़ेर एहसान भी थे, इसलिए मारने से हिचकिचाए। तो हजरत ने फरमाया बेदरीक तलवार चलाओ, बेदरीक जो है तलवार चलाओ, बगैर डरे के तलवार चलाओ, इसी में मेरी खुशी है। फिर तो क्या था, फिर तो क्या देर थी, तन अलग सर अलग। सर ने 3 दफ़ा आसमान की तरफ देख कर तबस्सुम किया, मुस्कुराया, हाजरीन डर गए। शहादत के वक्त कहा जाता है कि शहादत से कबल जो है आप सब्ज़ा उखेड़ रहे थे, घास जो है उखेड़ रहे थे। लोगों ने पूछा आप क्या करते हैं, फरमाया कि सल्तनत गुजरात के बीच बुनियाद जो है उखेड़ रहा हूँ, सल्तनत गुजरात की जो है बुनियाद उखेड़ रहा हूँ। फिर फरमाया कि जो है मेरा गोश्त कौवे और कुत्ते खाएँ और बहादुर का गोश्त दरियाई जानवर और मछलियाँ खाएँ। उन्होंने कहा कि मेरा गोश्त जो है कौवे और कुत्ते खाएँगे और बहादुर का जो गोश्त है जो है मछलियाँ खाएंगी। आपने ये जो है पेशेंगोई दी थी, हुआ यही कि बहादुर शाह वहाँ से रवाना होकर बंदरदेव में फिरंगियों फ्रांसीसियों के जहाज पर गया और उनसे मदद चाही। फ्रेंच लोगों ने पहले तो मदद देने का वादा किया, लेकिन बाद में शुबा पैदा होने पर रात के वक्त जबकि वो नींद में था हाथ पांव बांध कर दरिया में डाल दिया गया। और जैसा कि बंदगी मियाँ बाबन मजूब ने फरमाया था कि जो है मछलियों का जो है वो लुकमा बनेगा, उसी हिसाब से 944 हिजरी में जो है उसका यही हाल हुआ। तो बिल्कुल थोड़े से अरसे में जो है इसका ये आलम हो गया कि जो है इसका जो है गोश्त मछलियाँ खा गए। और बहादुर शाह के बाद जो है तख्ते गुजरात पर और 4 सुल्तान हुए, 37 बरस हुकूमत रही और बिलाखिर 1574 ईस्वी में जो है अकबर बादशाह ने छीन कर दिल्ली के साथ मुल्हक कर दी। तो जो है सिर्फ कहा जाता है कि 37 साल में 37 ईयर्स में जो है यहाँ पे जो है एक के बाद दिगर 7 बादशाह हुए हैं और जो है सल्तनत छीन ली। जो 4 की तफसील आपने तो सुन ली है, 5वां कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद शाह सुवम था, वो भी जो है एक ही अरसे में जो है कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर महमूद शाह आया है, 5वां बादशाह था, ये खुद के मुलाजिम ने उसको मार दिया। फिर 6वां जो है बादशाह सुल्तान अहमद शाह था, ये भी मारा गया। और 7वां बादशाह इसका नाम भी जो है मुजफ्फर शाह सुवम था। अकबर बादशाह ने 9 साल आगरा में इसको कैद रखा, बिलाखिर खुदकुशी करके अपनी मौत खुद पर जो है हराम कर ली। उसके बाद जो है ये हुकूमत जो है मुग़ल हुकूमत जो है मुलिक हो गई। जिस तरह बंदगी मैंने फरमाया था मुजफ्फर की औलाद को छुई फेरेगी, 7 मुजफ्फर उसी के बाद जो है 37 वर्ष में 37 ईयर्स में जो है एक के बाद दिगर 7 बादशाह बैठे, बेटा भाई वगैरह सारे के सारे जो है एक के बाद दीगर जो है मारे गए। और जैसा कि बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह ने पेशन गोई दी थी वो पूरी हुई, अल्लाह चाहा तो उसके बाद जो है थोड़ी सी और तफसील है एनल की और चापनियर की, जो कैपिटल था देखते देखते किस तरह जो है वो जंगल में तब्दील हो गया, उसकी थोड़ी सी तफसील है वो कल की निश्चित बयान कर दी जाएगी। फिर अल्लाह चाहा तो दोबारा जो है अब हम जो है हमारे उमूमी औकात की तरफ जो है लौट रहे हैं, जो रेगुलर टाइमिंग से 10 से 15 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। अल्लाह चाहा तो रमज़ान से पहले हमने जो एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया था गुनाह कबीरा, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था रमज़ान में, जो कि बुज़ुर्गों की सीरतें एक के बाद दीगर एक साथ थी मुंसलिक, इसलिए जो है दोबारा उस सीरीज़ का आगाज़ करने का मौका नहीं मिला। फिर बंदगी में की सीरत का आगाज़ हुआ, तो अल्लाह चाहा तो फिर एक 15 दिन है हमारे पास, फिर बाद में बंदगी में शाह दिलावर, बंदगी में शाह निज़ाम, ये हमारे बुज़ुर्गों की सीरत मुबारक है, उर्स है उनका, انشاءاللہ وہ خطبے ان کی سیرت کہی جائے گی. تو پھر جو ہے کل کی نشست میں تھوڑا سا مختصر سے یہ احوال کہہ دے جانے کے بعد اللہ چاہا تو پرسوں سے جو ہے پرسوں کی نشست میں یہ ہماری جو بندگی میں کی سیرت چل رہی تھی اس دوران جو ہے ایک تلاوت قرآن مجید میں جو ہے افمن کان علی بینتی کی سورہ ہود کی 17 آیت کی جو ہے تفسیر جو میری موت علیہ السلام کے تعلق سے تھی وہ پڑھنا ڈیو رہ گیا تھا. ہم جہاں کہیں پہ تلاوت کے دوران پہ وہ آیتیں آتی ہیں جہاں پہ جس کا تعلق میری موت علیہ السلام یا قوم سے ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے تفسیر پڑھی جاتی ہے اور ڈسکشن ہوتا ہے تجربے کرتے ہیں. تو وہ ڈیو تھا چونکہ جو ہے بندگی میں کی خصوصی نشستوں کا اہتمام ہوا تھا. اللہ چاہا تو پرسوں کی نشست میں وہ بڑی خاص آیتیں سب سے اہم آیتیں ثبوت مہدی میں سورہ ہود کی 17 آیت اللہ چاہا تو تجربے جو ہے پرسوں کی نشست میں سورہ ہود کی 17 آیت کی تفسیر پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد کی نشست سے اللہ چاہا تو ہفتے کے دن سے گناہ کبیرہ کا جو ہے سیریز کا آغاز ہوگا. واقعہ درم جائے گا.